हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब राधा रानी का जन्म हुआ तो राधा रानी के जो माताजी की माताजी हैं, राधा रानी की माताजी का नाम क्या है, उनकी माताजी का नाम क्या है, मुखारा देवी। उनके नाना का नाम क्या है, इंदुसेन। इंदुसेन और मुखारा देवी के द्वारा कीर्तिदा का जन्म हुआ और कीर्तिदा को दो भाई और दो बहन थे। तो मुखाराई नाम का एक गांव है जो राधा रानी का जो राधा कुंड है गोवर्धन में उससे एक दो किलोमीटर दूर है। तो मुखारा देवी भी बहुत वृद्धा हो गई थी और उनकी पुत्री कीर्ति भी काफ़ी वृद्धा हो गई थी जब तक उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। तो मुखारा देवी भी चिंतित थी कि हमें कभी पोती होगी या पोता होगा। तो जब राधा रानी का जन्म हुआ ये खबर पता चला उनको तो मुखारा देवी इतनी खुश हो गई कि वो भाव विभोरता में क्या किया, इतनी वृद्ध अवस्था में जो माताजी है वो अपने घर के बाहर आई और आंगन में जो बैलगाड़ी थी ना, बैलगाड़ियाँ बहुत सारी थी, बैलगाड़ी के बहुत पहिए भी पड़े हुए थे, बैल भी बैठे हुए हैं, गाय भी बैठे हुई है, तो उसमें गई और एक बैलगाड़ी का पहिया ऐसा उठा लिया उसने। सोच सकते हैं आप में से कितने लोग बैलगाड़ी का पहिया उठा सकते हैं, इतना भारी होता है वो। वो बुढ़िया ने उठा लिया और उसको गोल 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 घुमाया ऐसे चक्र की तरह। उसके बाद में घी से बने हुए जो दीपक है प्रज्वलित वो सब आरियों पर रखे उसके, मतलब ऐसे पूरा डेकोरेशन हुआ और फिर उसको गोल 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 घुमाया और नृत्य किया। उसके उत्साह को और अद्भुत को नृत्य को देखकर सब गोपियां बहुत प्रेरित हो गई, उन्होंने भी सब बैल की गाड़ी के चक्के उठाए। समाप्त हो गए तो बैल की गाड़ी के निकाल के गोल गोल घुमाए। तो उस नृत्य का नाम है चरकुला नृत्य। क्या नाम है उसका, चरकुला नृत्य। तो वो नृत्य जो है वो आज भी ब्रज में बहुत फेमस है। और ब्रज की एक विशेषता है कि जैसे हर साल में कंस का मेला निकलता है, कंस को एक जगह से उसकी प्रतिमा बनाकर ले जाते हैं, रंगभूमि तक जाते हैं और रंगभूमि में उसको जला देते हैं, तो वो जो उत्सव होता है वो केवल मथुरा में होता है। एक राधा रानी के झूलन का उत्सव होता है हरियाली तीज पे, तब एक रथ यात्रा निकलती है, वो बरसाने से श्रीदामा जी रथ लेके निकलते हैं और नंदगांव में पहुंचते हैं, वहां से राधा रानी को लेकर अपने मायके आते हैं, घर पे आते हैं, वहां पर उनको झूला झुलाते हैं। तो ये जो रथ यात्रा है वो भी केवल एक ही जगह पर होती है, बरसाने से नंदगांव। ऐसे ब्रज में कई प्रकार के उत्सव हैं जो केवल वहीं पर होते हैं और बाकी जगह नहीं होते हैं, तो बाकी जगह के लोग वहां पहुंचते हैं उसको देखने के लिए। तो ये चरकुला नृत्य जो है राधा अष्टमी पे, मतलब आज के दिन मुखारा गांव में होता है, जब रावल में और बरसाने में राधाष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है आज, लेकिन उसी समय पर मुखारा देवी पे चरकुला नृत्य चल रहे हैं। तो आज की तारीख में भी चरकुला नृत्य जो है ब्रज के संस्कृति में एक श्रेष्ठ नृत्य कला है। इसकी बहुत सारी अकादमी भी है जहाँ पर ये नृत्य सिखाते हैं लोगों को, उसकी प्रतियोगिता भी होती है और हर साल पेपर में न्यूज़ आता है कि इस साल नंदगांव की कन्या ने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया, इस साल वृंदावन की कन्या ने प्राप्त कर लिया, उसके फोटो भी आते हैं, वो ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं उसको। तो ये आनंद की घड़ी है जहाँ पर मुखारा देवी ने बड़े प्रेम से चरकुला नृत्य किया। इसके कुछ दिन पहले कृष्ण और बलराम जी का नामकरण करने के लिए कौन आए थे सब लोग बोलिए, क्योंकि गर्ग मुनि वसुदेव के कुल पुरोहित थे और कुल पुरोहित का कर्तव्य होता है कि जितने भी संतान होती है उनके सारे संस्कार वो करें। लेकिन धर्म संकट ये भी था कि अगर बच्चों का नामकरण विधि करने के लिए वसुदेव के कुल पुरोहित गर्गाचार्य ब्रज में गए और वहाँ के दो बालकों का नामकरण किया तो उसका मीनिंग क्या निकला, कि वसुदेव के पुत्र हैं वो। तो ये कंस को पता चलेगा कि अगर आप ओपन रूप में करेंगे तो, इसलिए उन्होंने कहा कि गुप्त रूप में करो। तो गुप्त रूप में उन्होंने गौशाला में कृष्ण बलराम का नामकरण किया, और कृष्ण बलराम का नामकरण करने के पश्चात तुरंत वो रावल चले गए। रावल जाकर उन्होंने देखो, जब रावल गए तो उन्होंने ये जो रहस्यमय बात थी कि मैं कृष्ण और बलराम का नामकरण करने के लिए आया था, ये बात गुप्त रूप में वृषभानु महाराज को बताई। तो वृषभानु महाराज ने जब दर्शन दिया उनको, तब ये ऐसे कहते हैं कि वो छत्र धारण करने से इंद्र की तरह नजर आ रहे थे वृषभानु महाराज। जो राजदंड है, रॉयल इंसिग्निया, वो धारण करके वो पति धर्मराज यानी यमराज नजर आ रहे थे, और वो अनेक सूर्यों की तरह प्रकाशित हो रहे थे, सारी दिशाएं उनके तेज से प्रकाशित हो रही थी। ये वृषभानु महाराज का वर्णन आ रहा है गर्ग संहिता में। तो वृषभानु ने महाराज ने गर्गाचार्य का स्वागत किया, पाद्य पूजन किया, परिक्रमा किया, उनका सेवा किया। तो वृषभानु महाराज ने फिर राधा रानी की प्राप्ति के बारे में उनको सुनाया। तो वृषभानु महाराज कहते हैं कि ये सब बातों का रहस्य समझाने के लिए मैं आया हूं। वो कहते हैं वृषभानु महाराज की मेरी जो कन्या है राधिका, उसका विवाह किससे होगा, सर्वोत्तम वर कौन होगा? जब ये प्रश्न पूछते हैं तो वृषभानु महाराज को अपने महल से लेकर हाथ पकड़कर गर्गाचार्य एकांत जगह में जाते हैं, कोई और नहीं है वहां पर, केवल वृषभानु महाराज और गर्गाचार्य। तो फिर उस समय जाकर गर्गाचार्य ने एकांत जगह पर यमुना किनारे में कहा कि अखिल ब्रह्मांड पति गोलोक धामेश्वर परात्पर भगवान श्री कृष्ण हरि अभी गोकुल में नंद महाराज के यहाँ पधारे हैं, जिनका नामकरण विधि करके मैं आ रहा हूँ। अनंत शेष भगवान शंकरशन जी रोहिणी के गर्भ से आए हैं बलराम बनकर, उनका भी नामकरण करके आ रहा हूँ। तो वृषभानु महाराज कहते हैं नंद जो हैं वो परम 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 भाग्यशाली हैं, उनका भाग्य मैं वर्णन नहीं कर सकता, कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा उनका भाग्य है। तो गर्ग मुनि कहते हैं कि पृथ्वी के भार को नष्ट करने के लिए, राक्षसों को जो कंस जैसे राक्षस हैं उनको नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण भगवान अवतरित हुए हैं, और उनकी जो परम प्रियतमा सखी है, अंतरंगा शक्ति है, वो आपके घर में गौलोक की अंतरंगा शक्ति कृष्ण की आपके घर में राधिका के रूप में विराजमान है। तो श्री वृषभानु महाराज सुनकर इतना आनंद विभोर हो जाते हैं, इतना आनंद विभोर हो जाते हैं, तुरंत अपनी पत्नी को बुलाते हैं, यह सब बातें उनको बताते हैं गर्ग मुनि के साथ। वो कहते हैं कि मैं इतना ऋणी हूँ आपका महाराज जी, इतना ऋणी हूँ कि आपने मुझे आकर ये बात बताई, और मैं अभी मेरी कन्या का विवाह केवल कृष्ण से करूंगा, और आपको उसका पौरोहित्य करना पड़ेगा। तो गर्ग महाराज क्या कहते हैं, नहीं मैं नहीं इसका पौरोहित बन सकता, इनका विवाह होगा जरूर दोनों का, लेकिन इनका विवाह जो है वो ब्रह्मा जी आकर करेंगे, इसलिए वो कहते हैं मैं उनका विवाह नहीं कर सकता, भांडिर वन में ब्रह्मा जी के पौरोहित्य में इनका विवाह होगा। जिन राधा रानी का दर्शन किसी भी देवता को दुर्लभ है, नामुमकिन है कि तपियों को, ध्यानियों को, और यज्ञ करने वालों को, और तपस्या करने वालों को, योगियों को, किसी को भी जिनका दर्शन अति दुर्लभ है, ऐसी राधा रानी आपके घर में निवास कर रही है, और जितने भी गोप और गोपियां यहाँ पर प्रकट हुए हैं वो सब गौलोक से राधा रानी की इच्छा से ही प्रकट हुए हैं, वो सब उनके ही विस्तार हैं, ऐसे गर्ग मुनि समझाते हैं। तो फिर वृषभानु और कीर्ति मैया कहती हैं कृपा करके हमें राधा नाम का शब्द का अर्थ बताइए। तो गर्ग मुनि राधा नाम का अर्थ समझाना आरंभ करते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग ध्यान से सुनते होंगे। वो कहते हैं कि एक बार मैं मेरे शिष्यों को लेकर गंधमादन पर्वत पर गया था, ऐसे गर्ग मुनि बता रहे हैं। वहां पर नारायण भगवान प्रकट हुए और उन्होंने सामवेद का सार मुझे सुनाया। वो सामवेद के सार में उन्होंने राधा रानी के नाम का अर्थ भी सुनाया। राधा नाम जो है वो चार अक्षर से बना है, र आ ध आ, बराबर। तो वो कहते हैं कि र का अक्षर जो है रमा यानी श्री ऐश्वर्य, आ का अर्थ है गोपियां यानी लीला, गोपियाँ क्या हैं? भगवान की लीला स्वरूपा हैं। गोपियाँ भगवान की लीलाओं को विस्तार करती है, लीलाओं में सहायता करती है, लीला की वृद्धि करती है, लीला में प्रेरणा देती है, लीलाओं का सहारा है भगवान का वो। तो आ यानी गोपियाँ यानी लीलाएं, ध यानी धरा यानी भूमि देवी, और एक आ है वो है विरजा। ये विरजा जो है एक बहुत ही श्रेष्ठ गोपी हैं और वो भौतिक जगत, भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक सृष्टि इसके बीच में भी नदी के रूप में बहती है। शी फ्लोज एज अ रिवर, उसके नाम का अर्थ है वी रजा। रजोगुण के परे जब आदमी पहुंचता है विशुद्ध सत्व में तो वो विरजा को पार कर सकता है, और विरजा को पार करके फिर दिव्य लोक में प्रवेश कर सकता है। तो ये जो चार स्त्रियां हैं, चार देवियां हैं, वो श्री कृष्ण का तेज इस चार रूप में प्रकट हुआ है, हाँ, रमा, लीला, भूमि और विरजा। और ये चारों श्री कृष्ण की पत्नियां बनी हुई है, गौलोक की पत्नियां हैं श्री कृष्ण की। तो एक बार ये चारों पत्नियां जब दिव्य कुंज में प्रवेश कर गई तो राधा रानी का दर्शन हुआ। तो राधा रानी का दर्शन होते ही ये चारों पत्नियां कृष्ण की राधा रानी में विलीन हो गई। इसलिए राधा रानी को नारायण भगवान बता रहे हैं सामवेद के सार के रूप में कि राधा रानी ये एक परिपूर्णतमा है। वो ऐश्वर्य की भी सन्निधि है, वो लीलाओं का भी सागर है, वो धरा की तरह आश्रय भी है और विरजा की तरह सुंदर भी है, और वो रजोगुण से पार करने को मदद करने वाली भी है। राधा रानी आश्रय स्वरूप है। राधा रानी जो है आश्रय विग्रह है। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम विग्रह है, राधा रानी आश्रय विग्रह है, क्योंकि राधा रानी का आश्रय ग्रहण करके ही श्री कृष्ण की शरण प्राप्त होती है। राधा रानी के बिना श्री कृष्ण की शरण अपने आप नहीं प्राप्त हो सकती है, हम लोग कितना भी चाहेंगे तो। तो परिपूर्णतमा के रूप में उन्होंने उनका वर्णन किया। और जो लोग राधा कृष्ण का नाम बार बार दोहराते हैं, उच्चारण करते हैं, पुकारते हैं, नारायण भगवान बता रहे हैं गर्ग मुनि को, वो परम भगवान को सहजता से प्राप्त करते हैं, परम भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो चार पुरुषार्थ जो है वो तुच्छ हो जाते हैं उसके सामने। चार पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये भी लौकिक पुरुषार्थ कहा गया इनको। काम और अर्थ तो पूरी तरह से लौकिक है क्योंकि वो विश्व के अंदर ही समाये हुए हैं। धन कमाना, ऐश्वर्य कमाना, संपत्ति कमाना, उसमें उसका भोग लेना, कमाकर उसका भोग लेने काम। तो काम और अर्थ भी हमारे जीवन का उद्देश्य है, लेकिन काम और जीवन का अल्टीमेट पर्पज नहीं है। धर्म और मोक्ष हमारे जीवन का पर्पज है, लेकिन वो भी लौकिक है। वो केवल आपको यहाँ के बंधनों से मुक्त कराएगा, यानी नेगेटिविटी से जीरो पर लाकर खड़ा करेगा, न्यूट्रलिटी पे लाकर खड़ा कर देगा। तो मोक्ष कोई परम प्राप्ति नहीं है, मोक्ष केवल बंधन मुक्ति है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो बंधन है उससे केवल आप मुक्त हो गए। आगे क्या करना है ना? अभी आप MBBS हो गए, आगे क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, नौकरी करना है, हॉस्पिटल खोलना है, क्योंकि अटैच होना है, दवाखाना खोलना है, वो सब आगे की बातें हैं, वो पॉजिटिव एक्टिविटी है। अभी तक केवल क्वालिफाई होने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे। तो ये भगवान की प्राप्ति तो उसके आगे की बात है। तो राधा कृष्ण का नाम उच्चारण करने से श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, श्री कृष्ण का सन्निधि प्राप्त होती है, गौलोक धाम की प्राप्ति होती है, श्री कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त होती है। ये केवल हरे कृष्णा बोलने वालों का प्राप्ति है, ध्यान रखना, क्योंकि हरा भी भगवान राधा रानी का एक नाम है। क्यों नाम उनका हरा देवी है? क्योंकि वो सबके दिल को हरण कर देती है, और साक्षात परम भगवान जो सबको आकर्षित करते हैं, सर्व आकर्षति इति कृष्णः, जो सबको आकर्षित करने वाले हैं, और साथ साथ सबका ध्यान तो आकर्षित करते हैं लेकिन सबका पाप भी आकर्षित कर लेते हैं। उनके दर्शन मात्र से सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं, जिनका नाम का उच्चारण करने से सबका पाप भी वो हरण कर लेते हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान का ध्यान वो खींच लेती है, इसलिए उसका नाम हरा देवी है। और जब हम उसको उच्चारण करते हैं तो हम हरे कहते हैं, हरे कृष्ण यानी राधे कृष्ण। युगल मंत्र जब उच्चारण करते हैं तो हम राधे कृष्ण बोलते हैं, और जब महामंत्र महाप्रभु द्वारा दिया हुआ करते हैं तो हरे कृष्ण बोलते हैं। और विशेष बात इसमें यह है कि श्री कृष्ण को पुकारने के पहले हम राधा रानी को पुकारते हैं, इसमें भी बहुत रहस्य छुपा हुआ है। क्योंकि अगर हम प्रत्यक्ष केवल कृष्ण को पुकारेंगे तो कृष्ण देखेंगे कि नहीं देखेंगे इसमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम राधे पुकारेंगे, समझो किसी के घर में बालक है, समझो उसका नाम सुनील है और ये मंदिर में कोई जोर से पुकार रहा है सुनील सुनील सुनील, तो सुनील शायद नहीं देखेगा लेकिन सुनील की माँ जरूर देखेगी, है ना, मेरे बच्चे को कौन पुकार रहा है, हु इज कॉलिंग माई सन, हु इज कॉलिंग माई बेलेवेड, मेरे प्रिय बालक सुनील को कौन पुकार रहा है। तो आप सुनील को जब पुकार रहे हो तो सुनील के प्रिय व्यक्ति का भी ध्यान आकर्षित कर रहे हो। तो श्री कृष्ण भगवान को पुकारेंगे आप शायद वो नहीं सुनेंगे, लेकिन जैसे आप हरे और राधे पुकारेंगे तो श्री कृष्ण देखेंगे कि मेरी प्रिय राधा रानी को कौन पुकार रहा है। इस तरह से हमेशा हम हरे कृष्ण लक्ष्मी नारायण सीताराम इस नाम से जोड़ी को पुकारते हैं। उम्मीद यह है कि जो शक्ति है भगवान की, या तो सीता देवी के रूप में प्रकट हुई है, या तो लक्ष्मी देवी के रूप में प्रकट हुई है, या राधा रानी के नाम से प्रकट हुई है, वो बहुत दयालु है, उनके स्वामी से अधिक दयालु है, अधिक करुणा वाली है, ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, और वो बहुत सारे दुख भी हमारे दूर करती है, बहुत सारे दोष भी हमारे दूर करती है, हमारे दोषों को वो सबको त्याग नहीं देती है, दोषों के साथ में होने पर भी जब उनको पुकारते हैं तो वो तुरंत हमको स्वीकार कर लेते हैं। तो हमें उम्मीद है, आशा है, अपेक्षा है कि जब वो स्वीकार करेंगी और वो प्रस्तुत करेंगी तो कृष्ण हमें स्वीकार करेंगे, वो टाल नहीं पाएंगे, नकार नहीं पाएंगे उसको। इसलिए ये बहुत ही रहस्यमय सिद्धांत है कि हम हमेशा सीताराम राधेश्याम लक्ष्मी नारायण इस प्रकार से पुकारते हैं, ताकि जिनको पुकारना है उनको इनके माध्यम से पुकारेंगे तो सहजता से उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित होगा। बाद में तो वो बता रहे हैं गर्ग मुनि की धर्म अर्थ काम मोक्ष वाले जो भी चार पुरुष आते हैं वो भी क्षीण हो जाते हैं, वो निरर्थक बन जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं जब हम राधा कृष्ण का नाम पुकारते हैं। राधा कृष्ण का नाम जो है ये पंचम पुरुषार्थ है। प्रेम पुमार तो पहा, प्रेम पुमार तो महान, मोक्ष में प्रेम की प्राप्ति होगी ही नहीं होगी ऐसी गारंटी नहीं है। मोक्ष यानी न्यूट्रैलिटी। अधिकतर लोग जब मोक्ष प्राप्त करने के बाद कुछ गोल नहीं होता लाइफ में तो ब्रह्मज्योति में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मज्योति क्या है? संधिनी यानी शाश्वत अस्तित्व। वहां पर ज्ञान और एक्टिविटी कुछ नहीं है, आप खाली शाश्वत हो, जन्म मृत्यु नहीं हो रही वहां पर, शरीर बुढ़ापे वाला नहीं है, शरीर भी होता नहीं वहां पर, लेकिन वो शाश्वती केवल हमको प्राप्त होती है, आत्मा शाश्वती में निवास प्राप्त कर लेती है। लेकिन शाश्वती में बहुत देर रहने से जीव बोर हो जाता है, उसको गतिविधि चाहिए, क्योंकि जीव का स्वरूप है रिलेशनशिप्स में, वो संबंधों में जीव का आनंद छुपा हुआ है। यहाँ तक कि हमारा हम जो है वो जीव शरीर धारण करके जब पृथ्वी पर आते हैं तो तब भी हम आदान प्रदान में ही ज़्यादा आनंद का या दुख का अनुभव करते हैं। अवर हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस लाइज इन रिलेशनशिप विद अदर्स। और सुख प्राप्त करना है तो भी हमको आदान प्रदान की आवश्यकता होती है। तो ये जो आदान प्रदान है वो सत्य जो है ब्रह्म ज्योति में नहीं होता है। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि सत्य को यानी केवल मोक्ष को प्राप्त करके ब्रह्म ज्योति में विलीन होने वाले जीव कुछ समय के बाद में पुनः भौतिक जगत में पतित हो जाते हैं, शरीर धारण करते हैं और फिर जनता की सेवा करने में अपने आप को लगा देते हैं, जैसे हॉस्पिटल खोलते हैं या और कोई धर्मार्थ कार्य करते हैं, क्योंकि उनको अन्य जीवों के प्रति जब तक संबंध नहीं होता सेवा वाला तब तक उनको पूर्ति का अनुभव नहीं होता। लेकिन जब तक ये सेवा वाली प्रवृत्ति भगवान के अंदर हम लोग स्थापित नहीं करते हैं तब तक जीव की अंतिम शांति परम पूर्णता नहीं होती है। इसलिए भक्ति करना चाहिए। भक्ति ये पॉजिटिव सकारात्मक एक्टिविटी है, मोक्ष से भी परे है वो। मोक्ष जो होता है ना वो परम भक्ति करने से मोक्ष लघुता कृता, यानी परम भक्ति जो है मोक्ष को लघु कर देती है, छोटा कर देती है, मोक्ष को इनसिग्निफिकेंट बना देती है। और वो जो शुद्ध भक्ति है उसका स्वरूप राधा रानी है। सांद्रानंद विशेषात्मा वो भक्ति करने वाले जीव को राधा रानी की तरफ से अनन्य प्रकार के सुंदर सुंदर दिव्य अनुभव होने लगते हैं। और राधा रानी की तरफ से जो भक्ति प्राप्त होती है इससे एक और गुण रूप को स्वामी समझाते हैं, वो है श्री कृष्ण आकर्षणी। वो श्री कृष्ण जो किसी को सबको आकर्षित कर लेते हैं वो स्वयं उस व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाते हैं जो राधा रानी का जो भेंट है हमारे लिए, शुद्ध भक्तिपूर्ण सेवा यानी राधा कृष्ण के नाम का जप, ये जो राधा रानी की तरफ से प्राप्त हो गया है उसकी वजह से श्री कृष्ण का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो जाता है। फिर आगे जाकर गर्ग मुनि बताते हैं कि रा उच्चारण करने से सब अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, रा उच्चारण करने से गर्भवास नष्ट हो जाता है, यानी गर्भवास जो प्राप्त होता है मृत्यु के बाद में जब कर्मों की पूर्ति नहीं हुई है हमारी, हमारा साधना सिद्ध नहीं हुई है, तो हम दोबारा गर्भ में प्रवेश करते हैं, तो वो जो गर्भवास है बहुत क्लेशदायक है, वो गर्भ का नाश, गर्भवास का नाश होता है केवल राग का उच्चारण करने से, और राग का उच्चारण करने से डिसीज और डेथ, रोग और मृत्यु का भी नाश हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर वो कहते हैं धाव उच्चारण करने से क्या होता है, पूरे भव बंधन से मुक्ति हो जाती है। फिर अभी कृष्ण भगवान वर्ग संहिता में उनका वर्णन देते हैं, ये राधा रानी के नाम का महिमा क्या है, वो बताते हैं, राज शब्दम कुर्वस्त्र कुर्वस्त्रास्तो ददामी भक्ति उत्तमा। राव उच्चारण करने वाले व्यक्ति को मैं उत्तम भक्ति प्रदान करता हूं, और धाव उच्चारण करने वाले व्यक्ति के पीछे भ्रमित होकर भागता हूं। धावत यैव ससंभ्रमः था उच्चब्दम कुर्वतः पश्चात यामी श्रवण लोभतः। ऐसे क्या कहते हैं, लालायित होकर मोहित होकर उसके पीछे पीछे भागता हूं जो राधा नाम का उच्चारण करता है। मैं उसी का हो जाता हूं जिसको जिनके कहते हैं कि योगी जपत तपी जपत ध्यानी जपत, हाँ अनंत जन्मों तक योगी ध्यानी तपस्वी कर्मकांडी उनको पूजन कर रहे हैं, और इतने अनंत जन्म योग और धर्मकांड करने के पश्चात भी जिनके शरीर के 20 नाखूनों में से हर एक नाखून में से अनंत किरणें प्रकाशित हो रही है, उन अनंत किरणों में से एक किरण का दर्शन भी नहीं होता है उनको, नाखून का दर्शन तो दूर ही रहा, भगवान का दर्शन तो दूर ही रहा, ऐसे दुर्लभ भगवान है वो भगवान जो अति दुर्लभ है, वो राधा नाम लेते ही आपके वश में हो जाते हैं। ऐसा भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मैं कैसे वश हो रहा हूं। अगर आप भगवान को पूछ रहे हैं आप इतने दुर्लभ है, योगी भी ध्यान गम्यम, योगियों को भी ध्यान में प्राप्त नहीं होते, तो आपको प्राप्त कैसे किया जाए, तो श्री कृष्ण भगवान भी रहस्य खोल रहे हैं कि धा शब्दम कुर्वतः पश्चात यामी श्रवण लोभतः। आगे बताते हैं, रा शब्द उच्चारेण देवस्पीतो भक्ति भवति माधव। माधव भगवान जो है वो हरे कृष्णा। अभी हम हमारे कथा को 2 मिनट के लिए विश्राम देते हैं, और युगल प्रिया माता जी आइए।